नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पातुकर। आज हम गुरु मंत्र कार्यक्रम के तहत एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका खुद का एक कोचिंग सेंटर है और इनके कोचिंग सेंटर से कई प्रतिभाएं निकल कर आई है। ऐसे एडवोकेट मधुकर जी गायकवाड़ जी से हम गुरु मंत्र कार्यक्रम के तहत आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। नमस्कार सर जी।
नमस्कार
सर जी, जैसा कि अभी देश में दो कोरोना की लहर हो चुकी है और तीसरी लहर आना अभी बाकी है और इस कोरोना काल में शालाएं पूरी तरह बंद है और शालाएं जब बंद है तो ऐसे समय में पढ़ाई कैसे होनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए?
ठीक है सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब अपन लॉकडाउन की स्थिति में चलते हैं तो पूरा समय अपने पास होता है। मेरा ये मानना है कि यदि आपकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही तो उसका जो एक डेढ़ घंटा आधा घंटा जो भी समय रहता है उसको निकालने के बाद अपने पास दिन के तीन प्रहर रहते हैं, सुबह का समय, दोपहर का समय और शाम का समय। तो ये तीन प्रहर को अपन तीन तीन घंटे में बांट ले, दो घंटे पढ़ाई करे और एक घंटा रिविजन करे, क्योंकि पढ़ाई के साथ रिविजन बहुत जरूरी। हम लोग पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन रिविजन को महत्वपूर्ण नहीं मानते, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। दो घंटा पढ़िए सुबह वाले समय में, एक घंटा रिवीजन करिए, तो कल पढ़ा था फिर आज जो पढ़ा ऐसा पढ़ते जाइए रिवीजन। तो ऐसा पांच दिन का एक शेड्यूल बना लीजिए, सोमवार मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक, और शनिवार एक ऐसा दिन रखिए जिसमें सिर्फ पांच दिन में आपने जो पढ़ा था उसका रिवीजन करना है, और रविवार के दिन केवल आप अपने जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करके लिखिए, यदि मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो लिख के लिखिए, और यदि आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट है तो आप पेपर हल करके देखिए, पुराने पेपर। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों में खासियत देखी गई कि वो पेपर देने सीधे स्कूल या कॉलेज जाते। मेरा ये मानना है, मेरा जो अनुभव रहा है इस परीक्षा के दौरान, मैं खुद प्रशासनिक सेवा के लिए ट्रेनिंग था, तो रिविजन के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो बच्चों को ऐसा दिन के तीन प्रहर में बांट के पढ़ाई करना चाहिए, पूरे समय का यूज हो सकता है।
सर जी, जैसा कि अधिकतर देखने में आता है कि जो छात्र छात्राएं स्कूल पढ़ते समय अपना लक्ष्य निर्धारण करने में उनको बहुत सी दिक्कतें रहती है, तो लक्ष्य निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए?
देखिए, लक्ष्य निर्धारण का आधार दो तीन बातें हो सकती है। सबसे पहले तो मतलब हमको शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता, ये दो को आधार बनाना चाहिए कि हमको किस तरह की परीक्षा की तैयारी करना है और हमारी घर की स्थिति क्या है, क्या हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, हम किस परीक्षा को कितना समय दे सकते हैं, ये सारे। और सबसे महत्वपूर्ण इनमें आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, चाहे विषय चयन की बात हो या फिर लक्ष्य निर्धारण की बात हो। तो सबसे पहले अपने स्वयं से कागज लीजिए और आप अपनी 10 बातें लिखिए कि सबसे 10 बातें आपकी इंटरेस्टिंग कौन कौन सी, फिर 10 में से 5 निकालिए, फिर 5 में से 3 निकालिए और 3 में से फिर 1 निकालिए। तो जो सबसे अच्छी, क्योंकि आपका मन जिस काम में लगता है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। हम किसी को देख के अपना लक्ष्य नहीं बनाते, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, लड़कियां खास करके, सहेली होना चाहिए इसलिए वो किसी विषय को ले लेते, ऐसा मत करिए। आप अपना इंटरेस्ट देखिए, आपका मन कहीं ना कहीं किसी काम को लगता है। जैसे मेरी एक आदत थी कि मुझे जनरल नॉलेज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, भाषण देना बहुत अच्छा लगता है, लीडरशिप करना बहुत अच्छा, तो ये ऐसा कोई ना कोई गुण आपके अंदर जरूर रहता है। और इस चीज को ध्यान दीजिए, इसमें हमारे गुरु, जो हमारे दोस्त, हमारे परिवार के लोग हमको सहयोगी बन सकते हैं कि आपकी प्रतिभा किस क्षेत्र में उजागर हो रही है, आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते, थोड़ा सा उनसे सहयोग लीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज लक्ष्य निर्धारण करने में या विषय चयन करने में इंटरेस्ट बहुत जरूरी, क्योंकि उसके साथ आपको लंबे समय तक चलना होता है। जी
सर जी, जैसा अधिकतर देखने में आता है कि इस कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई तो बच्चे करते हैं लेकिन वो याद नहीं रख पाते, तो छात्रों को याद रखने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि वो ऑनलाइन पढ़ाई करते समय जो बातें वो सीखे उसे याद रख पाए?
देखिए, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, उसको लिखना चाहिए। लिख के उसको अपने हिसाब से छोटी बात में भी लिख सकते हैं, और उसको लिखने के बाद जैसे आपकी क्लास खत्म होती है तुरंत उसको रिवाइज करिए, फिर अगले दिन 24 घंटे में रिवाइज करिए, फिर 3 दिन में करिए, फिर 7 दिन में। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, कोई बच्चा होशियार नहीं होता, रिविजन इज द बेस्ट, रिविजन सबसे बड़ा हथियार है। बार बार पढ़ो, 3 बार कोई भी चीज को पढ़ना चाहिए, कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए, और 3 बार पढ़ने के बाद फिर आप उसको एक कॉपी में लिखने के बाद याद करने मतलब पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा खुद से पूछिए कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्यों पढ़ा, वो क्या कह रहा था। हम लोग एक्चुअली ना मतलब इस तरह से मनन नहीं करते। आपने देखा होगा गाय जब चारा खाती है तो जुगाली करती, वो जुगाली उसे सीख सकते हैं कि मतलब कोई चीज हमने खाई है तो उसको बचाना चाहिए। तो इसलिए बच्चों को खास करके इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि पढ़ो कम, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कम पढ़ो, अधिक लिखो और अधिक सोचो। तो सोचना बहुत जरूरी है, और सोचने से मतलब यह है कि आपने क्या पढ़ा, उसको मनन करना चाहिए। कहीं बैठ जाइए और सोचिए अपने आप से कि मैंने क्या पढ़ा, गांधी जी ने क्या कहा था, भारत में कितने राज्य है, ऐसा अपने आप से सवाल करिए। आप देखिए आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है और माइंड बहुत तेज गति से काम करता है।
सर जी, ये कोरोना काल में ये भी देखने को मिल रहा है कि छात्रों ने अपने समय का यानी नियोजन करके नहीं रखा है। ऑनलाइन क्लास होने के बाद में एक तो बच्चे खेलने लग जाते हैं या फिर टीवी देखते हैं, तो छात्रों को अपने समय का नियोजन किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि अभी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है, चालाएं प्रारंभ हुई, ये बात अलग है कि अभी घर पर ही बैठकर ऑनलाइन उन्हें पढ़ना है, लेकिन उनका एक समय नियोजन तो होना चाहिए, तो इसे किस तरह करना चाहिए?
देखिए, नियोजन आपकी पूरी क्षमता को और आपके भविष्य की आधारशिला बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो नियोजन में सबसे पहले आपका पहला बिंदु रहेगा स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले कुछ समय प्राणायाम करने में या दौड़ लगाने में या जॉगिंग करने में कहीं पैदल चलने में लगा लीजिए। फिर उसके बाद यदि आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की हो, सरदार पटेल साहब की हो, शास्त्री जी, ऐसे बुक्स जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमने देखा बच्चों के परसेंटेज बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसमें जो कम्युनिकेशन स्किल रहती वो नहीं रहती। तो एक किताब जरूर पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा, बस आधा एक घंटे का काम है ये सब। उसके बाद जो विषय आपको सबसे कठिन लगता है एक टाइम टेबल बना लीजिए, और जो विषय आपको कठिन लगता है या फिर आपको आप अपनी बायोलॉजिकल जो घड़ी होती है, आपकी जो मस्तिष्क की एक क्षमता होती है कि आपको पढ़ने में मस्त लगता है, अच्छा लगता है कि लिखने में अच्छा लगता है सुबह वाले समय में, और कोई जरूर नहीं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, सबसे पहले आपकी नींद कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए नींद पूरी लेके एक समय के हिसाब से एक टाइम टेबल बना लीजिए, और जो विषय आपको सरल लगता है कठिन लगता है उसको पहले कर लीजिए। फिर अपने भोजन का अपना समय निर्धारित कर लीजिए, रिविजन का समय निर्धारित कर लीजिए, और खेलने के लिए बहुत समय निकालिए। खेलना पसंद, क्योंकि आपने शायद सुना होगा नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि आप दिन भरे में आपके शरीर से 3 या 4 बार पसीना निकलना चाहिए, बच्चों के लिए कहा था। और सही में पसीना निकलने के बाद आपने देखा होगा कोरोना काल में वो लोग बहुत कम प्रभावित हुए जिनके शरीर से पसीना निकलता था, और WHO ने जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि पसीना बहुत जरूरी है निकलना, इसलिए कोरोना काल में ये लोग प्रभावित थे। तो आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल में फाउंडेशन के जो विषय होते हैं उनको रखिए, फिर मैथ्स को रखिए। ऐसा आप देखिए समय का प्रबंधन हम बताएंगे जरूर कैसे करना चाहिए, लेकिन सबसे अंतिम कारक आप ही खुद बनते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बहुत अच्छा नियोजन कीजिए कि मुझे आज क्या करना है, मतलब आप सुबह उठते हो या रात को सोने के पहले लिख लीजिए कि मुझे कल कौन कौन से काम करना है, फिर उस कामों की एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे 10 काम है, 10 कामों में सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर लीजिए, अति महत्वपूर्ण, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण काम, फिर साधारण काम। तो ऐसा 3 श्रेणियों में बांट के अपने पूरे दिन को, सप्ताह को, महीने को पूरा विभाजित करके अच्छा नियोजन करिए और जबरदस्त काम करिए। ऐसा नहीं कि और ऐसा पूरा प्लान मत बनाए कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 1 घंटा 2 घंटा भी डेली पढ़िए, जैसे सूर्य देवता डेली निकलते ना उस तरीके से आप डेली यदि आप पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो आपकी कॉपी देखना महीने भरे में साल भर में पूरी भर जाती है। तो इस तरीके से नियोजन कीजिए, और नियोजन केवल पढ़ाई का ही नहीं करना है, स्वास्थ्य का करना है, खेलने का करना है, पढ़ने का करना है, और बढ़िया हफ्ता में एक बहुत अच्छी पिक्चर भी देखा करिए जो जबरदस्त होती है, जैसे गंगाजल हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। पिक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि तो पिक्चर देखने से आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। अच्छी किताब पढ़िएगा, उसको भी समय दीजिएगा, और दूसरों के विचारों को जानने और समझने के लिए भी समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है अपने नियोजन काल में। तो आप देखना, पढ़ना और सुनना, इन तीनों चीजों को अपने नियोजन में शामिल करिए, बहुत जबरदस्त प्रतिभा का निर्माण होता है हमारे।
सर जी, जैसा कि कहते हैं स्वस्थ रहने तो स्वच्छता आवश्यक है, तो स्वास्थ्य को जीवन का आधार कैसे बनाए और मनुष्यों को जीवन में स्वच्छता क्यों आवश्यक है, इस संबंध में भी आप बताइए।
जो बड़े गांधी जी का देखा कि जहां आप बैठे हो वहां आप मतलब अच्छा महसूस करती है, तो इसका मतलब है कि जब आप साफ सुथरे स्वच्छ वातावरण में रहते तो एक मानसिक अनुभूति होती है, और ये मानसिक अनुभूति हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करती है, एक सकारात्मक भाव पैदा करती है, उसी तरह के हार्मोन्स का हमारे शरीर में निर्माण होता है, इसलिए स्वच्छता जरूरी है। और सबसे बड़ी बात पता हमें जानकारी होनी चाहिए कि जब आपका मन स्वस्थ होता है, आपका आसपास का वातावरण स्वच्छ होता है तो आपको अच्छी अनुभूति होती है। जब आपका मन स्वस्थ होता है तो आपकी कार्य क्षमता, आपकी कार्य गतिशीलता में निश्चित रूप से बदलाव होता है, आपकी बहुत जबरदस्त परिवर्तन आता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। इसलिए स्वच्छता और स्वास्थ्य ये दोनों एक दूसरे के पर्याय है, क्योंकि आप जितना साफ सुथरा, जैसे हमारा नहाने का समय निश्चित हो, खाने का समय निश्चित हो, व्यायाम करने का समय निश्चित हो, साफ सफाई, अपनी किताबें बहुत अच्छी रखना चाहिए, अच्छा कवर वर, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें ही हमें बड़ा बनाती है। इसलिए स्नान का विशेष ध्यान रखिए, नींद का विशेष ध्यान रखिए, भोजन का ध्यान रखिए, क्योंकि सब एक दूसरे के पर्याय है। जी
सर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि छात्रों के जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है, और अनुशासन के साथ साथ छात्रों को, बच्चों को खेलना बहुत अधिक पसंद है, तो खेलते समय और पढ़ाई करते समय बच्चों ने किस किस तरह रहना चाहिए और उन्हें अनुशासन का पालन करना चाहिए?
अनुशासन का मतलब होता है किसी भी काम को सतत करना। आप कितने भी साधारण छात्र क्यों न हो, लेकिन आप असाधारण बन सकते हो यदि हम किसी काम की शुरुआत करें। और आप ध्यान रखिए, जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसका अंत जरूर होता है। आप एक किताब पढ़ना चालू कर दीजिए, धीरे धीरे देखना आप 10-15 दिन में पूरी किताब पढ़ के खत्म कर जाते हो। इसको अनुशासन कहते हैं। इसलिए हमारे कामों की एक व्यवस्था निर्मित कर लीजिए, कामों का विभाजन कर लीजिए, एक दूसरा उसके लिए समय निर्धारित कर लीजिए। तो तीसरी चीज, जिस समय के लिए आपने समय निर्धारण किया उस समय पे उस काम को करिए, आप उस क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रगति करती है। और ये व्यक्तिगत भाव है, ये अनुशासन किसी के द्वारा हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता, हमको स्वयं करना पड़ता है और बहुत जबरदस्त आप परिवर्तन ला सकते हो। दूसरी चीज, खेलने से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। पहले एक समय था कि कबड्डी खेली जाती थी, गिल्ली डंडा खेलते थे, भूरे भूरे खेलते थे, नदी में तैरने जाते थे, बहुत सारा होता था। आजकल वो सब बंद हो गया, हम लोग खाली उंगलियों का प्रयोग मोबाइल पे करने लगे। तो आप स्वयं देखिए, आपका मानसिक विकास तो हो रहा है लेकिन आपका शारीरिक विकास नहीं हो रहा। आपके शरीर की ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। शरीर की ग्रोथ होगी, आप व्यायाम करेंगे तो भूख लगेगी, भूख लगी तो अच्छा खाना खाओगे, अच्छा खाना खाओगे तो अच्छे शरीर में ब्लड का निर्माण होगा। इसलिए खेलना बहुत जरूरी है। इसलिए खेलने का समय निर्धारित कर लीजिए, शतरंज जो भी आपको खेल लगता है, क्योंकि एक खेल जरूर, और वो खेल खेलो जिसमें आपको दौड़ना पड़े, खास करके जैसे फुटबॉल हो गया, ये बहुत, जैसे बैडमिंटन हो गया या क्रिकेट हो गया, ये ऐसे गेम है जिसमें आपको दौड़ना पड़ता है। और आपने देखा होगा दौड़ने से हमारे शरीर में रक्त का संचार बहुत तेज हो जाता है, और जो शरीर में रक्त का संचार होगा तो निश्चित है पूरे शरीर के हर भाग में खून का प्रवाह होगा, तो हम स्वस्थ तो रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है ये सब करना।
सर जी, जैसा कि अभी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ, कई बच्चे 10वीं से पास होकर 11वीं में पहुंचे और 12वीं से पास होकर कॉलेज में पहुंचे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अधिकतर लोग देखते कि भाई फलाने छात्र ने वो विषय लिया तो हम भी वो विषय लेते, तो विषय चयन करने का क्या आधार होना चाहिए, और पढ़ाई करने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस तरह करें?
भविष्य क्या बन रहा हमारा, कि खाली हम लोग सैद्धांतिक पढ़ाई पे जोर दे रहे, हम लोग BSc करते, MSc करते, फिर BEd करते, लेकिन मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव दिया कि आप अपनी सैद्धांतिक पढ़ाई करिए जिसमें आपको खाली कागज पे डिग्री मिलने वाली, लेकिन भविष्य को भी देखिए कि आप बगैर किसी प्रतियोगी परीक्षा के जॉब नहीं पा सकते। और मैं कहता हूँ कि जॉब के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो हमको ज्ञान की समझ होना चाहिए, क्योंकि एक हमारे बहुत बड़े उद्योगपति इंडिया के, उन्होंने कहा था कि 98% पढ़े लिखे बच्चों के पास ज्ञान नहीं है, ये उनका कहना है। तो आप सोचिए, क्योंकि हम लोग 20 से पढ़ के अपनी पढ़ाई पूरी करते, किताब तो पढ़ना ही बंद हो गया आजकल, ट्यूशन पढ़ के हमने अपनी खुद की सोचने की क्षमता खत्म कर दी। मैं तो कहता हूँ कि आदमी को सबसे पहले अपने प्रयास से किसी चीज को हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपकी कंप्लीट एक पर्सनालिटी का निर्माण होता है। तो इसलिए आप विषय चयन करते समय सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको तथ्य याद रखने की बौद्धिक क्षमता आपके पास है, या विश्लेषण करने की क्षमता आपके पास है, या फिर एक सबसे बड़ी बात है कि किसी विषय को पढ़ने के बाद आपके मस्तिष्क में उसका चित्र बनता है क्या। जैसे मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या राजस्थान जब मैंने लोक सेवा आयोग की एग्जाम दी तो मैंने देखा हिस्ट्री, मैं साइंस वाला था लेकिन हिस्ट्री मुझे मजा आता था पढ़ने में, और मैंने हिस्ट्री से राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास भी की क्योंकि उसकी इमेज बनती थी मेरे दिमाग में। क्योंकि जिस चीज को, जैसे अभी तुलसीदास जी का रामायण है या वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, तो रामानंद सागर जी ने आपने देखा होगा उस पूरे कहानी को मतलब चित्र पिक्चर बना के पेश किया। इसलिए बच्चों को मैं कहना चाहूंगा जो भी चीज आप पढ़ते हो ना उसका इमेज बनाइए, उसकी कल्पना कीजिए, कल्पना में आप हो जाएंगे ना बहुत मजा आता पढ़ने में। इसलिए एंट्रेंस बहुत जरूरी है सबसे पहले किसी विषय के चयन में। दूसरी चीज, आप थोड़ा सा परीक्षण कर लीजिए कि आप किसी चीज को क्यों का आंसर दे सकते क्या। जैसे पानीपत के 3 युद्ध हुए, अभी जैसे मेरा केबीसी के लिए ऑडिशन हुआ था अमिताभ बच्चन जी का सीजन 13 के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप जिस राजनेता को अच्छा मानते क्यों मानते। तो ये जो देखिए मैंने कहा ना, आप किस स्कूल में पढ़ते मायने नहीं करते, सवाल करने की आदत होना चाहिए। उसमें पूरे 40 क्वेश्चन थे केबीसी के, वो पूरे फॉर्मेट में 40 क्वेश्चन में क्यों ज्यादा पूछा था उसने कि भाई आप इस नेता को अच्छा मानते तो क्यों मानते हो। तो क्यों का सवाल आपको तीक्ष्ण बुद्धि का बना सकता है, ये क्यों की क्षमता आपको बाकी लोगों से अलग बना सकती है। इसलिए आप अपनी तथ्यात्मक क्षमता को देखिए, विश्लेषण क्षमता को देखिए, और उस आधार पे अब जैसे गणित लेना है, मान लीजिए आपकी तार्किक क्षमता कम है तो आप गणित नहीं ले सकते। यदि आपको जीव जंतुओं से मतलब थोड़ा सा लगाव है, पेड़ पौधों से लगाव, तो विज्ञान ले सकते हैं। आपकी सांख्यिकी बहुत अच्छे, गणित बहुत अच्छे, तो आप मतलब उस हिसाब से विषय का चयन करिए। आप में अच्छी लीडरशिप है, अच्छा निर्णय लेने की क्षमता है, तो आप प्रशासन में आइए। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होती है। आप देखिए सफल लोगों को देखो, हम लोग क्या करते हैं अपने आसपास के लोगों के उन लोगों के ऊपर ध्यान देते जो असफल हुए। अरे सफल लोगों को देखो ना, सफल लोगों को देखो कि वो कलेक्टर साहब है या वो SDM साहब है, वो टीचर है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो काम कैसे करते, उसके लिए क्या करते वो लोग, कैसा कैसा करते। एक मतलब सफल बनने के लिए हमको सबसे पहले सफल लोगों को देखना होगा, उस थ्योरी को समझना होगा, और फिर स्वयं डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप यदि ऐसा करके यदि स्वयं निर्णय लेते हैं और उस निर्णय में थोड़ा बहुत सहभागिता अपने परिवार के लोगों, लेकिन ज्यादा लोगों को मत पूछिए, क्योंकि आप जब ज्यादा लोगों को पूछेंगे विषय चयन को लेकर या किसी को लेकर तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि आप थोड़ा बहुत जाने के बाद अपना खुद का निर्णय लीजिए। मैंने कहा ना कागज पे लिखिए और खुद से बातें करिए, और क्यों करी कि भाई मैं ये विषय ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, फिर इस विषय में क्या है, क्या वो चीजें मैं समझ सकता हूँ, ऐसा प्रश्न बनाइए, उन प्रश्नों के खुद ही उत्तर देती जाइए, और जहां आपको मदद लगती तो हम लोग तो तैयार ही बताने। क्योंकि मैं देखा अभी कुछ कॉलेज के मतलब सर लोगों ने मुझे मैं एक टॉपिक दिया था कि सर लक्ष्य निर्धारण के लिए क्या करें, तो मैंने एक अपनी कहानी बनाई है, मैं उसमें आतुरगर जी को सेंड कर दूंगा तो आप सब लोग पढ़ लीजिए कि मैंने एक टॉपिक लिखा था तो उसके आधार बताए क्यों। तो कहने का मतलब ये सबसे, क्योंकि देखिए आपका भविष्य आज के किए गए निर्णय के ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह के विषय लेते हैं। और कोई जरूर नहीं है कि हम लोग कलेक्टर ही बने, सबसे पहले जरूरी होता है एक अच्छा इंसान बनने, और फिर आप देखिए कि आपके अंदर फिजिकल क्षमता है कि मेंटल क्षमता है, लॉजिकल क्षमता है या लीडरशिप क्वालिटी। अभी देखिए युवा वर्ग सब कोई राजनीति में जा रहा है, तो क्या सब राजनीति के दक्ष लोग हैं क्या वो लोग ना। राजनीति में उन लोगों को जाना चाहिए, सबसे पहले अपना आधार तैयार होना चाहिए। हमारा खुद का आधार नहीं है, हम बेरोजगार है, बड़े बड़े नेताओं के पीछे घूमते, तो ऐसा नहीं। आप अपना फोकस करिए, सबसे पहले अपना जीवन बहुत जरूरी है, और जब आप अपने स्वयं के जीवन के निर्माण के लिए प्रयत्न करके आप अपना पद प्राप्त कर लेते फिर आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते और आप बहुत अच्छा सा कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। जी
सर जी, अब आपसे एक अंतिम प्रश्न, छात्रों को और घर में बच्चों में भी संस्कार क्यों जरूरी है, और कोरोना काल में आप इन बच्चों को अपना क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहोगे।
देखिए संस्कार मतलब आपकी सफलता की आधारशिला है। अभी देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अपने गांव गए थे, तो जब वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी धरती माता जिस गांव के हैं उस धरती को चरण स्पर्श किया, और जब उनके टीचर से मिलने गए, वो खुद गए उनके टीचर से मिलने, तो उन्होंने उनके पैर छुए। तो ये जो संस्कार है, ये हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कार है। लेकिन मैं एक देख रहा हूँ कि आजकल बच्चे पढ़े लिखे तो है लेकिन उनमें बड़ों का मतलब सम्मान करने की भावना कम होती जा रही है। तो सफलता के लिए, अब देखिए आईएएस की जो परीक्षा होती है भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, तो उसमें आपके पढ़ाई का कैलकुलेशन नहीं होता, आप कितने होशियार है, वहां तो खाली लिखा रहता है ग्रेजुएशन बस। तो वो आपके अंदर क्या चीज है, उसमें एक एथिक्स का पेपर होता है 300 नंबर का, उसमें ये संस्कारों का ही रिजल्ट दिखता है आपके। उसमें पूछा जाता है कि भाई ईमानदारी क्या होती है, निष्ठा क्या है, तो ये क्या है, संस्कार है। तो ईमानदारी का मतलब है कि केवल पैसे की थैली मिली तो पुलिस स्टेशन जाके पहुंचा गया ना, वो ईमानदार नहीं है, ईमानदारी वो भी है, लेकिन आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार है, आप अपने स्वभाव के प्रति कितने ईमानदार है। सलाम साहब का शायद उदाहरण पता होगा, एक दिन वो किसी सभा स्थल में गए थे, तो उनको अच्छी आलिशान कुर्सी बैठने के लिए दी गई थी और बाकी पब्लिक साधारण इधर बैठी थी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, ये उनका बड़कपन है। तो ये बड़कपन कहाँ से आता है, अच्छे लोगों को पढ़ने से, अच्छे लोगों को सुनने से, अच्छे लोगों को देखने से और अच्छे लोगों की संगत, क्योंकि आप देखना ईश्वर की प्राप्ति का मतलब होता है अच्छे मित्र की प्राप्ति, इसलिए जरूर है कि आप अच्छे मित्रों के साथ मतलब रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, क्योंकि देखिए ये सब एक दिन का काम नहीं है संस्कार, ये कोई जरूरी नहीं कि जिसके पिता यदि मान लीजिए शराब पीते तो हम संस्कार ही पैदा हो जाएंगे, कई घर में ऐसे दिखे कि पिता भले ही शराब पीता है लेकिन उस घर के बच्चे बहुत अच्छे होते, तो ये उसके गुरु से मिलता है, क्योंकि ये समाजीकरण की प्रोसेस होती है। और समाजीकरण कैसे होता है, परिवार से, विद्यालय से, हमारे पड़ोस से और हमारे मित्र मंडली से, इसलिए चार घटकों को आधार बना के आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आपके अंदर संस्कार आएंगे। और सबसे पहले अपने टारगेट को हमेशा, मैंने कहा ना आपका टारगेट सामने है तो आपने आप अपना निर्माण होता है। और दूसरी चीज, जो बच्चे हैं जो घर में रहते हैं, मैं कहता हूं कि घर में आप बढ़िया सा, यदि आपके घर में पेपर आता है तो ठीक, नहीं तो मोबाइल सबके पास आता है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोगों के मतलब चरित्र के बारे में दिया रहता है। अभी देखिए मैं मराठी केबीसी खेल रहा था 10 बजे के पहले, तो उसमें महाराष्ट्र के एक संत का पूछा था कि संत एकनाथ किसके पुतनिया थे, मराठी में पूछा था, वो मराठी के शब्द समझने में बड़े दिक्कत, तो उसमें गुरु रामनाम ऐसा कुछ नाम था उसमें, मैं मराठी समझ, हालांकि मेरा उत्तर सही हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब आप इधर उधर का पढ़ते रहते तो आपका नॉलेज, जबकि मैं मराठी जानता नहीं लेकिन उसके बहुत सारे प्रश्नों को मैं हल कर पा रहा हूँ, तो मुझे मजा आ रहा है, उसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि घर में बैठो, लेकिन घर में बैठने के साथ साथ इस पीरियड में, मैं पिछले 3-4 महीने से घर में हूँ लेकिन इस पूरे पीरियड में मैंने जनरल नॉलेज की तैयारी की और कौन बने करोड़पति के लिए मैंने अपना ऑडिशन भी किया। तो ये इस तरीके से अपने ज्ञान का फायदा ले सकते, ज्ञान कहीं पे भी काम आ सकता है, तो इसका उपयोग करिए आप जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर रूबरू का मोबाइल वाणी के श्रोताओं को और खासकर नए शैक्षणिक सत्र में जो छात्र अभी आगे की पढ़ाई करेंगे उनके लिए अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से जिला समय बेहतर पात्र कर
जी, नमस्कार।